नमस्कार, मैं हूं अरिसुदन और इस पॉडकास्ट में हम बात करते हैं डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन की मधुशाला की, उसके सार की, सारांश की, भावों की, उसके अर्थों की, भावार्थों की और उससे जुड़े कुछ किस्से कहानियों की। पिछले अंक में बात की थी जीवन में असंतोष के महत्व की और बताया था कि बच्चन बाबू को अपना सुव्यवस्थित जीवन छोड़कर फौजी ट्रेनिंग के लिए क्यों जाना पड़ा और सुनाई थी उसी से जुड़ी कुछ कविताएं। आज सुनाते हैं एक किस्सा बच्चन दंपति की सड़क दुर्घटना का, बच्चन जी और तेजी जी का, और कैसे उनकी कविता ने उन्हें वहां संकट से बचा लिया। तो आज की कहानी का आरंभ मधुशाला की इस कविता के साथ करते हैं जिसने शायद इस घटना को घटित होने से पहले ही देख लिया था। और ऐसा कहते हैं कि कवियों की कविताएं कई बार आने वाला समय पहले से ही देख लेती हैं, या शायद नियति कुछ ऐसा करती है कि नियति ने वो कविता पढ़ ली हो और सोच लिया कि अब तो कुछ ऐसा करना है। बहरहाल सुनते हैं ये वाली कविता। यम आएगा लेने जब तब खूब चलूंगा पीहाला, यम आएगा लेने जब तब खूब चलूंगा पीहाला, पीड़ा संकट कष्ट नरक के क्या समझेगा मतवाला। यानी जब यम लेने आएगा मुझे तब मैं खूब हाला पीकर चलूंगा, मस्ती से चलूंगा। अटल बिहारी वाजपेयी ने भी कहा है, इतना काफी है अंतिम दस्तक पर खुद दरवाजा खोलें। और यहां मधुशाला कहती है कि जो मतवाला है उसे नरक की पीड़ा, संकट, कष्ट इन सबसे क्या लेना देना, वो तो इन सबसे बहुत ऊपर उठ चुका है, वो तो मन से ही मतवाला है। यम आएगा लेने जब तब खूब चलूंगा पीहाला, पीड़ा संकट कष्ट नरक के क्या समझेगा मतवाला। क्रूर कठोर कुटिल कुविचारी अन्यायी यमराजों के, डंडों की जब मार पड़ेगी आड़ करेगी मधुशाला। कि नरक में अगर पहुंच गया और वहां यमराज और यमदूत, ये जो लोग होते हैं नरक के संभालने वाले, क्रूर कठोर कुटिल शक्ल से ही दुष्ट दिखने वाले, जब वो मुझे टॉर्चर करेंगे, जब वो मुझे डंडे मारेंगे, तो कवि कहते हैं कि मधुशाला उस समय उन्हें बचाने आ जाएगी। क्रूर कठोर कुटिल कुविचारी अन्यायी यमराजों के, डंडों की जब मार पड़ेगी आड़ करेगी मधुशाला। तो जो इंसान मतवाला है, जो सुख दुख पीड़ा कष्ट स्वर्ग नरक इन सब के जंजाल से बाहर निकल चुका है, उसका क्रूर अन्यायी समाज या सरकार ये क्या बिगाड़ लेंगे। ऐसे इंसान पर जब अत्याचार होता है तो उसे बचाने के लिए तो स्वयं मधुशाला, स्वयं नियति, सारी सृष्टि खड़ी हो जाती है। किंतु साथ में ये भी कहते हैं कि यदि हम प्राकृतिक सामाजिक नियमों के अनुसार काम ना करें तो उसका दंड भी भोगना पड़ सकता है। ऋग्वेद में एक पंक्ति है, मधु वाता रितायते मधु शरंती सिंधवे माधवीर नह संतोषधि। यानी कि सृष्टि के नियमों के अनुकूल चलें तो वायु मिठास लाती है, नदियां मिठास लाती हैं, वनस्पतियां मीठी हो जाती हैं। तात्पर्य, मानव जीवन को शारीरिक सामाजिक प्राकृतिक नियमों के द्वारा संचालित करो। शारीरिक नियम तोड़ा तो हॉस्पिटल में जाएंगे, सामाजिक नियम तोड़ा जेल जाना पड़ सकता है, और प्राकृतिक नियम तोड़ा जैसा कि आजकल हम सभी कर रहे हैं तो प्राकृतिक आपदाओं का सामना भी करना पड़ेगा। और देखिए, कई जगह पर ट्रैफिक पुलिस कितनी सख्त होती है, तो जहां तक डंडों की बात है, मधुशाला ने तो कह दिया कि डंडों की जब मार पड़ेगी आड़ करेगी मधुशाला, किंतु सड़क के नियम तोड़ते पाए गए, सामाजिक नियम तोड़ते पाए गए, तो पुलिस के डंडों की मार अवश्य पड़ सकती है। और वहां बचाने यदि मधुशाला ना ही आए तो ज्यादा अच्छा है, वरना DUI यानी ड्रंक एंड ड्राइव का केस भी लग सकता है। लेकिन फिलहाल सुनाते हैं एक कहानी जब मधुशाला वाकई अपने कवि को बचाने के लिए प्रकट हो गई और वो कैसे हुआ। ये कहानी है बच्चन जी की आत्मकथा दशद्वार से सोपान तक से। एक बार की बात है, बच्चन जी और तेजी जी अपनी कार से दिल्ली से बरेली जा रहे थे, साथ में एक परिचित भी थे जिन्हें बच्चन बाबू अंकल बुलाते थे। तो अंकल ही ड्राइव कर रहे थे और बच्चन बाबू कहते हैं कि ऐसा ड्राइव कर रहे थे मानो ड्राइवर नहीं पायलट हों। उस जमाने में 70 की रफ्तार के ऊपर। शाम का समय, रास्ता बिल्कुल साफ। अचानक से कहीं से एक भैंस सड़क पार करने के लिए भागती हुई आई और धड़ाक। पीछे बैठे बच्चन बाबू ने केवल देखा कि भैंस एक बड़े से गेंद की शक्ल में कोई 5 गज ऊपर उछलकर सड़क के बाईं ओर लगभग 20 गज की दूरी पर जा गिरी। इतनी तेज रफ्तार पर भैंस से टकराकर कुछ भी हो सकता था। मोटर उलट सकती थी, पास के किसी पेड़ से भिड़कर चकनाचूर हो सकती थी, तीनों की हड्डी पसली चूर चूर हो सकती थी। और इस दुर्घटना में मौत का तो बहुत बड़ा खतरा था। किंतु आंखें खोली तो देखा कि मोटर वो तो चारों पहियों पर सीधी खड़ी है। बस ये तीनों, बच्चन जी, तेजी जी और उनके अंकल, केवल ये तीनों चेतना शून्य हो गए हैं, एक तरह से हल्की सी बेहोशी। और जब इन सब की चेतना लौटी तो पहले तो टटोला कि हम सशरीर जिंदा तो हैं, या पता लगा कि मरकर प्रेत हो गए और प्रेत बने हुए एक दूसरे को देख रहे हैं। आश्चर्य की बात, सौभाग्य की भी, कि किसी को खरोंच तक नहीं लगी। बस गाड़ी आगे से पिचक गई और इंजन खराब हो गया, बाकी गाड़ी देखने में एकदम ठीक ठाक। किंतु अब कार को केवल टो करके ही आगे ले जाया जा सकता था। तो इसके पहले कि ये लोग सारी स्थिति को ठीक से समझ पाते, निर्णय ले पाते कि क्या करना है, क्या देखते हैं कि जो भैंस का मालिक है वो कहीं से प्रकट हो गया, बिल्कुल यमराज की तरह, और अपने साथ कहीं से 10-12 लठेतों को भी ले आया। इन लोगों को घेर लिया और धमकी देने लगा, बड़े आए मोटर दौड़ाने वाले, हमारी भैंस मार दी, अब 500 रुपये रखाए बिना ना हम तुम्हें यहां से जाने देंगे और ना तुम्हारी गाड़ी को। 500 रुपया उस समय में बहुत बड़ी रकम होती थी। बच्चन बाबू ने बड़ी विनम्रता के साथ उनसे कहा कि निकट के पुलिस थाने जाकर रिपोर्ट लिख देते हैं और आप हमें जाने दें, हम आपको रुपया जो है दिल्ली से भिजवा देंगे, क्योंकि साथ में इतना रुपया तो लेकर चलते नहीं हैं और हमारे पास है ही नहीं। लेकिन जो भैंस का मालिक था और जो लठैत थे साथ में, वो कहाँ मानने वाले थे। वो कहते हैं कि भैया, हमें पुलिस पे कोई भरोसा नहीं है, आप चुपचाप अपनी घड़ी, अंगूठी, गहने, बटुआ सटुआ जो भी हो यहीं हमारे सामने रखो, नहीं तो वरना ... अब स्थिति को बिगड़ते देखा तो ये तीनों बड़े चिंतामग्न हो गए, सोच रहे हैं कि क्या करें, कैसे बचें। लेकिन तभी जैसे एक चमत्कार हुआ। प्रभु प्रलाप सुनी कान, बिकल भये बानर निकर, आई गये हनुमान जिमी, करुणा महम वीर रस। रामचरितमानस में तुलसीदास कहते हैं कि लक्ष्मण जब मूर्छित थे और हनुमान जी संजीवनी बूटी लेकर अभी तक नहीं लौटे थे, तो सब लोग बड़े टेंशन में थे, नर्वस थे, चिंता में थे, और यहाँ श्री राम प्रतीक्षा में विकल होकर विलाप करने लगे, रोने लगे। और ये देखकर सारी वानर सेना जो थी वो भी बड़ी व्याकुल और करुणा में ही हो गई। किंतु क्या होता है, इतने में जैसे ही हनुमान जी समूचा पर्वत लेकर वहां पहुंचे तो सारी वानर सेना की आंखों में चमक सी आ गई। ऐसा लगा चमत्कार हो गया, अचानक से प्रकाश छा गया, ऐसा लगा मानो जैसे करुण रस के प्रसंग में वीर रस घुल गया हो। तो हुआ ये कि उसी समय दुर्घटना स्थल पर एक सज्जन आ पहुंचे जो वहां की पाठशाला में अध्यापक थे और कवि बच्चन की कविता के प्रेमी। बच्चन बाबू को पहचानते ही एकदम भाव विभोर हो उठे और तुरंत गांव वालों से बोले, ये बहुत बड़े आदमी हैं, लोग इनके दर्शनों को तरसते हैं, तुम्हारा सौभाग्य है कि तुम इन्हें देख रहे हो, साक्षात देख रहे हो, और इनका सम्मान करने की जगह तुम इन्हें परेशान कर रहे हो, अरे इनके तो पांव छुओ, ऐसा अवसर तुमको जीवन में ना मिलेगा। अब गांव वालों के लड़के अध्यापक जी की पाठशाला में पढ़ते थे, उनका वहां बड़ा मान था, सम्मान था, और स्वर इतना दबंग कि विरोध में किसी की आवाज न उठी। तो गांव वालों ने स्वयं खराब हो चुकी मोटर को एक ट्रक से बांधा कि उसे टो करके, खींच करके आगे ले जाया जा सके। अध्यापक महोदय ने सुलहनामा करवाया, समझौता करवाया, और सहमति हुई 300 रुपये की, जो बाद में कायदे से दिल्ली से भेज दिए गए थे। तो ये जो कृपालु सुहृदय अध्यापक महोदय थे, इनका नाम था पंडित शांति प्रसाद शर्मा। बच्चन बाबू ने उनके प्रति बहुत आभार व्यक्त किया, बहुत धन्यवाद किया और साथ ही मन में अपनी कविता को भी बहुत धन्यवाद किया। तो ये जो सज्जन थे शर्मा जी, इनके साथ उनका पत्राचार काफ़ी समय तक बना रहा। उन्होंने कभी कुछ नहीं मांगा, किंतु कविराज अपनी कई पुस्तकें उन्हें भेजते रहे। तो देखिए, इस तरह से आपकी कला या आपका जो कार्य है या आपके जो पुण्य हैं वो कहीं भी काम आ सकते हैं। इसीलिए कहते हैं कि कुछ भी व्यर्थ नहीं जाता। अगर हम एक हाथ भी हिलाएं तो उसका असर यूनिवर्स में कहीं ना कहीं तो होता है, और जो भले इंसान होते हैं वो आपको कहीं भी मिल सकते हैं। तो इसीलिए कविराज मधुशाला में कहते हैं, सकुशल समझो मुझको, सकुशल रहती यदि साकी बाला, मंगल और अमंगल समझे, मस्ती में क्या मतवाला। यानी यदि मेरी साकी बाला कुशल पूर्वक रहे, सुख शांति के साथ रहे, तो समझो कि मैं भी सुख शांति के साथ हूं, मैं भी प्रसन्न हूं। और जो मतवाला होता है उसे मंगल और अमंगल से क्या लेना, वो तो अपनी मस्ती में खोया रहता है। सकुशल समझो मुझको, सकुशल रहती यदि साकी बाला, मंगल और अमंगल समझे, मस्ती में क्या मतवाला। मित्रों मेरी क्षेम न पूछो, आकर पर मधुशाला की। क्षेम यानी जो लोगों का कुशल मंगल पूछा जाता है, जो भली पूछी जाती है। तो कवि कहते हैं कि मित्रों मेरी क्षेम न पूछो, मित्रों मेरी भली न पूछो, आकर पर मधुशाला की। कहा करो जय राम न मिलकर, कहा करो जय मधुशाला। कहा करो जय राम न मिलकर, कहा करो जय मधुशाला। बहरहाल देश में तो जय श्री राम वाला माहौल है इन दिनों, लेकिन कवि कहते हैं कि उस समय तो वो केवल मधुशाला की जय कर सकते थे, क्योंकि वही उन्हें बचाने आई थी। और सोचिए, ये कविता लिखी जा चुकी थी 1930 के दशक में और ये घटना हुई 1960 के आसपास। तो कविता ने बहुत पहले ही देख लिया था कि मधुशाला एक दिन अपने कवि को बचाने के लिए कहीं ना कहीं से प्रकट हो जाएगी, जैसे द्रौपदी की रक्षा के लिए श्री कृष्ण आ गए थे। तो इस चतुष्पदी पर विस्तार से कभी और चर्चा करेंगे, आज यहीं विराम लेते हैं। अगले अंक में बात होगी जीवन की अवस्थाओं की, मानव जीवन में यौवन के महत्व की, क्या रंग क्या रूप होता है यौवन का, और उससे जुड़ी कुछ कविताएं। बताइएगा ये अंक आपको कैसा लगा। आप इसे रिव्यू कर सकते हैं स्पॉटिफाई या एप्पल पर, और मुझसे जुड़ सकते हैं इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, लिंक सब नोट्स में दिए हुए हैं। तो मिलते हैं अगले अंक में, तब तक स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए, चाय कॉफ़ी पीते रहिए, और आप भी हमारे साथ अपने अपने जीवन की मधुशाला की जय जयकार करते चलिए।